الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں بزرگ صحابہ، بزرگ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا کہ جنہوں نے شروع کے دور میں اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے طلبگاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے، نیکیوں کی ترغیب دلانے والے، اللہ کے معاملے میں ڈرنے والے، حکومت و سلطنت حاصل ہونے کے باوجود دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو انتہائی جان فشانی اور امانت داری سے نبھاتے رہے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ زبردست عشق رسول تھے، اور دنیا سے بے رغبتی ایسی کہ آپ ابھی سلسلے میں سنیں گے اور آپ کا بھی دل گواہی دے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں کا دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کیسا بے رغبتی والا انداز تھا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی ان کو ساتھ لے کر ملک شام روانہ ہو گئے. وہاں کچھ ہی دنوں بعد تنگ دستی نے آ لیا. اب غور کریں، گورنر ہیں شام کے حضرت سعید بن عامر، اور گھر میں تنگ دستی آ گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کو اطلاع ملی تو آپ نے 1000 دینار انہیں بھیجے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وہ دینار لے کر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور فرمایا، یہ ہمیں امیر المومنین نے بھیجے ہیں. زوجہ نے عرض کی، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے بعض سے گھر کا راشن خرید لیں اور بعض جو بچے ہیں وہ آئندہ کے لیے سنبھال کر رکھ لیں. حضرت سعید بن عامر نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں؟ اب غور کریں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار بھیجے ہیں. اب گھر والوں نے مشورہ دیا، راشن لے لیتے ہیں، کچھ بچیں گے تو آئندہ کے لیے رکھ لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، میں اس سے بہتر مشورہ نہ دوں. تو زوجہ نے عرض کیا، آپ فرما دیں. تو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ ہم یہ مال کسی تاجر کو دے دیتے ہیں، کسی بزنس والے کو دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے تجارت کرے اور ہم اس کا نفع کھاتے رہیں، کب بزنس میں انویسٹ کر لیتے ہیں تو یہ پیسے ہم کھا کے ختم کرنے کی بجائے کسی انویسٹمنٹ میں لگا لیتے ہیں اور اس کا جو پروفٹ آتا رہے گا وہ ہم کھاتے رہیں گے، اور ہمارے سرمایہ کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی، ہمیں پروفٹ ملتا رہے گا. زوجہ نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہے. چنانچہ آپ نے کچھ کھانے پینے کا سامان، 2 اونٹ 2 غلام خریدے، پھر لوگوں کی ضروریات کا سامان غلاموں کے ذریعے اونٹوں پر رکھوا کر مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیا. اونٹ منگوائے، غلام لیے، کھانے پینے کا سامان خریدا، اونٹوں پر لاد کر وہ کہاں پجوا دیا، سارا سامان مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا. کچھ دن گزرنے کے بعد زوجہ نے عرض کی، فلاں فلاں سامان ختم ہو گیا ہے، آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور حاصل ہونے والے پروفٹ نفع سے سامان خرید لائیں. آپ نے زوجہ کو کوئی جواب نہ دیا. زوجہ نے پھر کہا، یعنی زوجہ سے مراد آپ کی بیوی، اب کی بار بھی کوئی جواب نہ پا کر زوجہ نے آپ کو ستانا شروع کر دیا. نہیں، انہوں نے اصرار کیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ صرف رات کو گھر میں تشریف لاتے और सारा दिन घर से बाहर गुजार देते। आपके घर वालों में से एक आदमी था जो आपके साथ आपके घर आया जाया करता था। एक दिन उसने इनकी जौजा से कहा कि आप क्यों इन्हें तकलीफ देती हैं, वो सारा माल तो सदका कर चुके हैं। ये सुनकर वो माल के ख़त्म होने पर अफसोस करने और रोने लग गई। अब उनको रोना आ गया कि इतना माल आया था और तंगदस्ती के दिन है और वो सारा इन्होंने बांट दिया। एक दिन हज़रत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हो ये घर तशरीफ़ लाए तो जौजा से फरमाया, आराम से बैठी रहो, मेरे चंद दोस्त कुछ अरसा पहले मुझसे जुदा हो गए हैं। अगर मुझे दुनिया और जो कुछ इसमें है सब मिल जाए तब भी मैं उनके तरीके से दूर नहीं हटूंगा। अगर कोई जन्नती हूर आसमान दुनिया से झांक ले तो तमाम अहले ज़मीन को रोशन कर दे और उसके चेहरे का नूर चांद सूरज की रोशनी पर गालिब आ जाए, और जो दुपट्टा वो ओढ़ती है वो दुनिया माफीहा से बेहतर है। लिहाजा इन हूरों की खातिर तुझे छोड़ना तो मेरे लिए आसान है, लेकिन तेरी खातिर मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर आपकी जौजा नरम दिल और राजी हो गईं। आखिरत की याद दिलाई, जन्नत की याद दिलाई, आखिरत के सौदे पर तवज्जो दिलाई। तब जहन बनाया कि हम दुनिया को तरजीह देंगे तो दुनिया के ना होकर रह जाएं, आखिरत को तरजीह दें, जन्नत और जन्नत की नेमतों का जिक्र किया जाए। अब ये घर अमन का गहवारा बनाने का, घर में एक माहौल अच्छा बनाने का एक अंदाज़ ये भी तो हमारे सामने आया। हम समझाएँ, बैठ के अपने बजट पर, अपने मामलात पर डिस्कशन करें, घर वालों की सोच बनाए। ये तो एक बहुत बड़ा तवक्कुल का, अल्लाह पर भरोसा रखने का, दुनिया से बेरगबती का एक बड़ा आला आपका मुकाम है। हमें इतना तो ज़रूरी है कि घर वालों को हराम से बचने का जहन दें। जहाँ डिमांड्स आती हैं, जहाँ फरमाइशें आती हैं, जहाँ तकाजे आते हैं, ये चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये बना दें, वो बना दें, ये एसी लगवा दें, ऐसे पर्दे लगवा दें, ऐसे डेकोरेशन बनवा दें, ऐसे कारपेट्स हो जाएं, ऐसा फर्नीचर आ जाए, ऐसे हमारे घर में बर्तन आ जाएं, ऐसा हमारा अंदाज़ हो जाए, इस टाउन से दूसरे टाउन में चले जाएँ, इस सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में चले जाएँ। अब जब डिमांड्स आती हैं तो बाज़ औक़ात जो है वो शौहर अपनी बीवी या बच्चों की डिमांड पर हराम में पड़ता है, अब नाजायज़ ज़राए इख्तियार करता है। जल्दी अमीर होने या शॉर्टकट के ज़रिए अमीर होने के लिए फिर ये हराम में पड़ते हैं, किसी गलत इन्वेस्टमेंट में पड़ते हैं, सूदी कारोबार में पड़ते हैं, हराम कामों में पड़ते हैं, कोई धोखा देते हैं, कहीं फ्रॉड करते हैं, किसी का हक तलफी करते हैं। तो यूँ बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से बंदा खुद दोज़ख की तरफ जा रहा है। लोग अय्याशी करेंगे इस पैसों पर, औलाद ऐशो इशरत करेगी, घर वाले ऐशो इशरत करेंगे, अच्छा वो भी फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ुकात ये पैसे की फरावानी बाज़ुकात तकब्बुर में डालती है, गुनाह आसान हो जाते हैं, बदकारी आसान हो जाती है, गंदे काम आसान हो जाते हैं। तो इसलिए बाज़ के हक में पैसा ना होना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और जैसे दुनिया से बेरगबती का इन्होंने दर्स दिया कि हम दुनिया की वजह से आखिरत को दाव पर ना लगाएं, आखिरत की वजह से दुनिया को छोड़ा जाना जो है ये फ़ायदेमंद है, ये दुनिया चंद रोज़ा है। तो यूँ हज़रत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु ने अपने घर वालों की सोच आखिरत वाली बनाई। अच्छा, अब अहले हिम्स जो थे इनकी चार शिकायत का वाक़या बहुत मशहूर और बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। हज़रत खालिद बिन मादान से मरवी है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सईद बिन आमिर को हिम्स का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। जब अमीरुल मोमिनीन हिम्स तशरीफ़ लाए तो अहले हिम्स से फरमाया, तुमने अपने गवर्नर को कैसा पाया? उन्होंने अपने गवर्नर की चार शिकायतें की जिसकी वजह से हिम्स वालों को छोटे कूफ़ी कहा जाने लगा। उन्होंने कहा, हमें इनसे चार शिकायत हैं। एक ये कि ये दिन चढ़े हमारे पास आते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह उन्होंने फरमाया, तो बहुत बड़ी शिकायत है, इसके अलावा क्या शिकायत है? बोले, ये रात को किसी की बात नहीं सुनते। आपने फरमाया, ये भी बड़ी शिकायत है, और क्या है? बोले, ये महीने में एक दिन घर में ही रहते हैं, हमारे पास नहीं आते। आपने फरमाया, ये भी बहुत बड़ी शिकायत है, और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा, कभी कभी इन्हें बेहोशी का ऐसा दौरा पड़ता है जिसकी वजह से मरने के करीब हो जाते हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हों ने अहले हिम्स और इनके गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर को एक जगह जमा फरमाया। गवर्नर हैं, अंदाज़ा करें आप, अहले हिम्स के साथ इनको जमा किया اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ آج اس معاملے میں میرا فیصلہ غلط نہ ہو۔ دعا کے بعد اہل حمص سے فرمایا، تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ دن چڑھے ہمارے پاس آتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر نے فرمایا، اللہ کی قسم اس بات کا اظہار مجھے پسند نہیں، لیکن مجبوراً بتائے دیتا ہوں کہ اب بھی لوگ جمع ہیں، ایلیگیشن بن رہا ہے کہ دن چڑھے جب وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجبوراً بتائے دیتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی آٹا گوندھتا ہوں، پھر اس کے خمیرہ ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکا کر کھانا کھاتا اور وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے لوگوں سے پوچھا، اور کیا شکایت ہے؟ بولے، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ تو آپ نے عرض کی، یا امیر المومنین، اگرچہ یہ بتانا مجھے پسند نہیں، لیکن مجبوراً بتائے دیتا ہوں کہ میں نے دن لوگوں کے معاملات کے لیے اور رات اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم نے مزید شکایت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک دن ہمارے پاس نہیں آتے، ایک دن ایسا ہے یہ چھٹی کرتے ہیں، ناغا کرتے ہیں، یعنی آتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ پوچھنے پر حضرت سعید بن عامر نے عرض کی، کپڑے دھونے کے لیے میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی جوڑا ہے، جب وہ میلہ ہو جاتا ہے تو اسے خود ہی دھوتا ہوں، پھر اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب سوکھ جاتا ہے تو اسے رگڑ کر نرم کرتا ہوں، پھر پہن کر شام کو ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، اور کیا شکایت؟ اہل حمص نے کہا، کبھی کبھی ان پر رنج و غم کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر نے کہا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں بھی مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ قریش نے پہلے تو ان کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے کاٹا، پھر انہیں سولی پر لٹکا دیا اور پوچھا، تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ پھر فرت محبت سے با آواز بلند پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں، مجھے حضرت خبیب کی شہادت کا دن یاد آتا اور یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد کیوں نہیں کی، کیونکہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا اور اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، بس یہ سوچتے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس بات کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں کہ میں نے حضرت خبیب کی مدد کیوں نہ کی، میں نے ان کو کیوں نہ بچانے کی کوشش کی، کیونکہ فرماتے میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سب سنا تو فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے میری فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر نے دعا مانگی تھی، اللہ میرا فیصلہ غلط نہ ہو، میں نے حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنایا، لوگ ان پر اعتراض کرنے لگے ہیں، یا اللہ میری رائے غلط نہ ہو، میرا فیصلہ غلط نہ ہو۔ پھر اللہ کی حمد کی، الحمدللہ جس نے میری فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر امیر المومن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے اور فرمایا، ان سے اپنی حاجات کو پورا کر لو۔ ان کی زوجہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کے کام کاج کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ پھر وہ حضرت سعید بن عامر نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ ہم یہ دینار اسے دے دے جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت لوٹا دے؟ زوجہ نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر والوں میں سے قابل اعتماد شخص کو بلایا اور دیناروں کی بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر فرمایا، یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں، فلاں خاندان کے مصیبت زدوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا، یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لو۔ پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد آپ کی زوجہ نے کہا، آپ ہمارے لیے کوئی خادم کیوں نہیں خرید لاتے؟ اور مال کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا، وہ مال تمہیں آخرت میں سخت ضرورت کے وقت مل جائے گا۔ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह नो गवर्नर थे। अब अंदाज़ा करें, किसी को अगर दुनिया में कोई मनसब मिलता है, कोई मुकाम मर्तबा, कुछ चार लोगों पर अफसरी मिल जाती है, कुछ चार लोगों में सुपरवाइज़र बन जाता है या बड़ा बन जाता है, किसी शोबे का निगरान बन जाता है, अब इसके ठाट बाट और अंदाज़ और इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। हज़रत सईद बिन आमिर गवर्नर हैं और गवर्नर के घर में खादिम नहीं है। हज़रत सईद बिन आमिर के पास एक लिबास है, दूसरा लिबास नहीं है। दुनिया से बेरगबती का आलम यह है, और अपना लिबास खुद ही धोते हैं, उसके सूखने का इंतज़ार करते हैं, सूख जाता है उसको रगड़ के नरम करके उसको पहन के लोगों में आ जाते हैं। घर में खादिम नहीं रखा हुआ, आटा खुद ही गूंथते हैं, उसको खमीरा होने का इंतज़ार करते हैं, खाना पकाते हैं, वुजू करके लोगों के पास गवर्नर हैं। और फिक्र आखिरत ऐसी है कि इस्लाम से पहले के अपने उस फेल को भी याद करके कि मैं हज़रत खुबैब की शहादत के वक्त वहाँ मौजूद था, जब हज़रत खुबैब के जिस्म का गोश्त काटा जा रहा था, जब हज़रत खुबैब को सूली चढ़ाया जा रहा था, उस मंज़र को याद करके रोते थे। बड़े वाज़े लफ्ज़ों में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से अर्ज़ की, हुज़ूर दिन लोगों के कामों के लिए मैंने रखा हुआ है, रात मैंने अब इबादत के लिए रखी हुई है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जिनकी रातें अल्लाह की बारगाह में सजदों और क्याम में गुजर जाती है। ये वो हस्तियां होती हैं जो रात के पिछले पहर में अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, सारी सारी रात जो नवाफिल में, तिलावत में, इबादत इलाही में गुजार देते हैं। इनकी फिक्र आखिरत, इनकी दुनिया से बेरगबती, हमने दुनिया में सदा नहीं रहना, हमें अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। और ये वो हस्तियां जिनके बारे में रब ने कुरान में फरमा दिया, कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, इन सारे सहाबा के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। ये आखिरत की फिक्र कैसी गालिब है, दुनिया से बेरगबती कैसी है, और माल आए भी तो उसकी हवस नहीं, लालच नहीं, उसमें दिलचस्पी कोई नहीं। और माल 1000 दिनार हज़रत फारूक आज़म देकर गए हैं कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, तो घर में खादिम कोई नहीं, लिबास एक है। अब अंदाज़ा करें, इसके बावजूद 1000 दिनार आए वो बांट दिए बेवाओं में, यतीमों में, मिस्कीनों में, ज़रूरतमंदों में, हाजतमंदों में, और घर वालों का क्या जहन बनाया, हमें जब सख्त ज़रूरत होगी ना तो तब मिल जाएंगे। तो कब मिलेंगे, फरमा आखिरत के लिए तुम्हारे जमा कर दिए हैं ना, तो आखिरत में जब सख्त ज़रूरत होगी उस वक्त में मिल जाएंगे। अरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन साबित से मरवी है कि अमीरुल मोमिन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु ने कबीला बनी जुमहा के एक शख्स हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु को बुलाकर फरमाया, मैं आपको फलां फलां इलाके का गवर्नर बनाना चाहता हूं। उन्होंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस आजमाइश में ना डालिए, ओहदे की तलब नहीं, मनसब का लालच कोई नहीं। क्या कह रहे हैं, मुझे इस आजमाइश में ना डालें। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने अमारत का वज़न अपने सर पर डाल लिया और मुझे तन्हा छोड़ दिया। फिर अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मैं आपके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर दूँ? हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर ने अर्ज़ किया, अल्लाह ने मुझे इतना अता फरमाया है कि इससे कम मुझे किफ़ायत करता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता। रावी बयान करते हैं, आपको जो वजीफ़ा मिलता, आप घर का राशन ख़रीदने के बाद बाकी सदका कर देते। तो जौजा पूछती, बकिया रकम कहाँ है? फरमाते, मैंने कर्ज़ दे दिया है। कुछ लोगों ने इनके पास आकर कहा, आपके घर वालों और ससुराल वालों का भी आप पर हक है। आपने फरमाया, मैं इनके हुकूक अदा करने पर किसी को तरजीह नहीं देता, प्रेफर नहीं किसी और को करता, और ना हूरे ऐन की तलब में किसी इंसान की रज़ा का मुतलाशी हूँ। अगर जन्नत की एक हूर दुनिया की तरफ झांक ले तो सारी ज़मीन आफ्ताब की तरह चमकने लगे, और मैं जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाले ग्रोह से पीछे नहीं रहना चाहता। जन्नत में दाखिल होने वाला जो सबसे पहला ग्रोह है ना, उससे पीछे नहीं रहना चाहता। मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि अल्लाह तमाम लोगों को हिसाब के लिए जमा फरमाएगा, तो गरीब मुसलमान जन्नत की तरफ ऐसे तेज़ी से जाएंगे जैसे कबूतर पर फैलाकर अपने घोंसले की तरफ उतरता है। इतनी तेजी के साथ जैसे घोंसले की तरफ कबूतर उतरता है, फरमाने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब अल्लाह पाक तमाम लोगों को हिसाब के लिए जमा फरमाएगा तो गरीब मुसलमान जन्नत की तरफ ऐसे तेजी से जाएंगे। इनसे कहा जाएगा ठहरो पहले हिसाब दो, तो वो कहेंगे हमारे पास तो कुछ भी नहीं जिसका हिसाब हो। इनका परवरदिगार फरमाएगा मेरे बंदे सच कहते हैं, फिर इनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा और वो दूसरे लोगों से 70 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हजरत फारूक आजम को खबर मिली कि सईद बिन आमिर को मुश्किलात का सामना, यहाँ तक इनके घर में आग नहीं जलती, तो आपने उनकी तरफ कुछ माल भेजा, उन्होंने वो सारा माल मुख्तलिफ थैलियों में डाला और आसपास के पड़ोसियों में बांट दिया, सदका कर दिया और फरमाया मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है अगर कोई हूर अपनी उंगली जाहिर कर दे तो हर जानदार उसकी खुशबू पाए तो क्या मैं तुम्हारी खातिर उनको छोड़ दूँ? अल्लाह की कसम ए दुनिया की औरतों, तुम इस बात के ज़्यादा लायक हो मैं तुम्हें इन हूरों की खातिर छोड़ दूँ ना कि इन्हें तुम्हारी खातिर। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हो की फ़िक्र आखिरत, दुनिया से बेरगबती, दरवेशी, आपका जब इतने बड़े मनसब पर आने के बावजूद, जब वो सल्तनत मिलने के बावजूद, गवर्नरी मिलने के बावजूद इस कदर सादगी वाला अंदाज़ हमें भी एक दर्स देता है कि हमें भी दुनिया को तरजीह नहीं देनी चाहिए, आखिरत को तरजीह दें और सदका करते हुए ये ज़हन बना लें कि सदका ये अल्लाह के साथ तिजारत है, ये अल्लाह को कर्ज़ देना है। गोया कि अल्लाह पाक फरमाता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा कर्दन हसनन फयुदाइफहु लहु अदआफन कसीरा, है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे दे, अल्लाह उसके लिए बहुत गुना बढ़ा दे, कर्ज़ दे, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए ज़हन बनाए कि मेरे लिए आखिरत का ज़खीरा बन रहा है, सख्त हाजत के वक्त मिलेगा, ये ज़हन बनाए कि मुझे कई गुना बढ़ा के अता किया जाएगा। क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के सायक में होगा, वो सबसे पहले जो ग्रोह जन्नत में दाखिल होगा उनमें शामिल होगा सदका देने वाला। तो दुनिया की गुर्बत पर कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, तंगी का कोई सामना करना पड़ जाए तो बेसब्री ना करें, शिकवा शिकायत ना करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्ले पावा। अल्लाह पाक हमें हज़रत सईद बिन आमिर की सादगी और फ़िक्र आखिरत का सदका हमें भी फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए और दुनिया के लालच और हवस से बचते रहते हुए ज़िंदगी पाकीज़ा और नेकी के कामों में खर्च करने की, सरफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी चैनल देखते रहें, इंशाअल्लाह करीम अमल का जज्बा मिलता रहेगा। अल्लाह पाक हमें इन सहाबा की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाही खातम नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम।
चांद है और सितारे सहाबा, सहाबा।